आगे सबक देखिए भाई, वलौ कानल इख्तिलाफु फी असलिल मुसम्मा यजिबु महरुल मिस्ल बिल इजमा لأنه هو الأصل عندهما وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما. भाई गुज़श्ता सबक में साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि मियां बीवी के दरमियान महर के सिलसिले में इख्तिलाफ आ गया. मैंने बताया था कि यहां इख्तिलाफ की कई सूरतें बनती हैं. कभी मिकदार के अंदर इख्तिलाफ होगा, खावंद एक मिकदार जिक्र कर रहा है और बीवी दूसरी मिकदार जिक्र कर रही है. कभी ये इख्तिलाफ असले मुसम्मा ही के अंदर होगा, खावंद कहेगा कि मुसम्मा था ही नहीं, हमने कुछ भी महर मुकर्रर नहीं किया था, और बीवी कहेगी कि नहीं हमने महर मुकर्रर किया था भाई. और फिर ये इख्तिलाफ या तो सोहबत से पहले होगा या सोहबत के बाद होगा, और फिर ये इख्तिलाफ या तो दोनों की जिंदगी में ही होगा या ये इख्तिलाफ दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं, या ये इख्तिलाफ जब दोनों का इंतकाल हो चुका है उसके बाद दोनों के वारिस आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं. तो यहां इख्तिलाफ की कई सूरतें बनती हैं. मैंने बताया साहिब हिदाया सबको जिक्र फरमाएंगे, अलबत्ता ये जो पहली सूरत है ये वो सूरत है कि जब खावंद और बीवी जिंदा हैं और निकाह मौजूद है, निकाह दोनों के दरमियान कायम है, उस वक्त ये दोनों आपस में इख्तिलाफ कर रहे हैं, और इख्तिलाफ भी असले महर में नहीं कर रहे बल्कि महर की मिकदार में इख्तिलाफ कर रहे हैं. मसलन खावंद कहता है महर 1000 था और बीवी कहती है महर 2000 था. तो देखो मिकदार के अंदर इख्तिलाफ है और दोनों की जिंदगी में इख्तिलाफ है और निकाह के कयाम की हालत में यह इख्तिलाफ हो रहा है. लेकिन मैंने बताया था कि अगर खावंद ने सोहबत के बाद तलाक दी है तब भी यही हुक्म होगा, और नीज अगर दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और फिर उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं तो इस सूरत में भी यही मसला होगा. मिकदार में इख्तिलाफ है, या तो यह जिंदगी में होगा या तलाक दी है सोहबत करने के बाद, या दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर फिर इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो चारों सूरतों का यही हुक्म है. लेकिन बहरहाल जो जिक्र किया जा रहा है इस वक्त वो निकाह की कयाम की हालत में इख्तिलाफ को जिक्र किया जा रहा है और मिकदार के अंदर भाई. फिर मैंने यहां पर दावे का तरीका भी आपको बतलाया था कि जब भी कोई शख्स किसी चीज का दावा करता है तो मुद्दाई के जिम्मे बयेना होती है, उसके जिम्मे है कि वो दो गवाह पेश करे. अगर वो दो गवाह पेश कर देता है तो काजी उसके हक में फैसला कर देगा, और अगर उसके पास गवाह नहीं है और वो कहता है काजी साहब मैं कसम खाने को तैयार हूं, गवाह तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूं कि यह चीज मसलन मेरी है, तो काजी कहेगा कि भाई आप मुद्दाई हैं, मुद्दाई के जिम्मे बयेना होती है, उसके कौल का कोई एतबार नहीं. कौल जो है वो मुनकिर जो है, मुनकिर के कौल का एतबार किया जाता है. तो अगर मुद्दाई ने बयेना पेश कर दी तो काजी उसके हक में फैसला कर देगा, अगर उसके पास बयेना नहीं तो फिर उसके बाद फिर मुनकिर के कौल को देखा जाएगा. मुनकिर अगर मुद्दाई के दावे की नफी पर कसम खा लेता है तो फिर काजी उसके हक में फैसला कर देगा, और अगर मुनकिर ने कसम खाने से इनकार कर दिया तो फिर इस सूरत में भी मुद्दाई के हक में ही काजी फैसला कर देगा. मालूम हुआ बयेना मुद्दाई का मोतबर है, मुनकिर के बयेना का कोई एतबार नहीं, और कौल मुनकिर का मोतबर है, मुद्दाई के कौल का कोई एतबार नहीं. और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि कौल उस शख्स का मोतबर होता है कि जाहिर हाल जिसकी ताइद कर रहा हो. मसलन जैद के पास एक गाड़ी है, जैद के कब्जे में है, एक और आदमी अचानक आया और उसने दावा कर दिया जैद के खिलाफ कि ये गाड़ी मेरी है, तो अब जाहिर हाल जैद की ताइद कर रहा है कि गाड़ी जैद के कब्जे में है, तो जाहिर यही है कि जैद ही की गाड़ी है. तो इस सूरत में जाहिर हाल जैद की ताइद कर रहा है तो जैद का कौल मोतबर है, और दूसरे शख्स का कौल जाहिर हाल के खिलाफ है तो उसके जिम्मे बयना है। तो कौल किसका मोतबर होता है? जाहिर हाल जिसकी ताइद कर रहा हो, और बयना किसका मोतबर होता है? जो जाहिर हाल के खिलाफ हो। भाई, और फिर मैंने यह भी बतलाया था कि यह जो कसम खाई जाती है यह हमेशा नफी पर खाई जाती है। मसलन उस आदमी ने कहा यह गाड़ी मेरी है और जैद इनकार कर रहा है, तो अब जैद यह कसम नहीं खाएगा कि वल्लाह काजी साहब यह गाड़ी मेरी है, क्योंकि यह तो इस बात कर रहा है, इस बात के लिए तो बयना चाहिए होती है। तो यहां जैद इनकार पर कसम खाएगा, उस शख्स ने जो दावा किया है उसका रद्द करेगा कि वल्लाह काजी साहब यह गाड़ी इस आदमी की नहीं है। तो कसम हमेशा किस पर होती है? नफी पर, और इस बात के लिए बयना चाहिए। भाई, तो यहां पर मियां और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ आया, मियां और बीवी के दरमियान इख्तिलाफ आया और मिकदार महर के अंदर इख्तिलाफ आया, और ये दोनों मियां बीवी जिंदा हैं, जिंदगी में ये इख्तिलाफ हुआ और दोनों का निकाह मौजूद है, निकाह कायम है, इस हालत में ये इख्तिलाफ हुआ है, तो इस सूरत में तरफेन फरमाते हैं कि औरत का कौल मोतबर है महर मिसल के पूरा होने तक, और खावंद का कौल मोतबर है महर से जायद के सिलसिले में। मैंने बताया कि यह बड़ा मुश्किल कौल है तरफेन का भाई, और यह मुजमल कौल है, इसकी उन्होंने कोई तफसील वगैरह बयान नहीं की। और जब हमारे अइमा से कोई ऐसा कौल या ऐसी बात आए जिसमें इजमाल हो, जो मुजमल हो, जिसकी तफसील का पता ना हो, तो फिर हमारे जो बड़े फुकाहा हैं वो उस कौल की तशरीह करते हैं उन्हीं अइमा के उसूलों के मुताबिक, तो उसकी तशरीह करते हैं, और इसको तखरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? तखरीज भाई, यानी अइमा के मुजमल कौल की तशरीह जो है यह तखरीज कहलाती है, और यह उन्हीं के उसूलों की रोशनी में होगा, और यह हर फकीह के बस की बात नहीं है भाई। तो यह बड़ा मुजमल कौल था, फिर असहाब तखरीज ने इसकी तफसील बयान की। वो फरमाते हैं के तरफेन के कौल का मतलब यह है कि यहां महरे मिसल को फैसल बनाया जाएगा, उसके जरिए फैसला किया जाएगा, और महरे मिसल जिसकी ताइद करेगा उसी का कौल मोतबर होगा, क्योंकि जब महरे मिसल जिसकी ताइद कर रहा है तो मालूम हुआ जाहिर हाल उसकी ताइद कर रहा है। मसलन खावंद ने दावा किया है 1000 का, और इस जैसी औरत का महरे मिसल भी 1000 या उससे कम होता है, तो महरे मिसल खावंद के कौल की ताइद कर रहा है कि जब इस जैसी औरत का महरे मिसल 1000 या उससे कम होता है, तो मालूम हुआ इस खावंद ने भी इसका महर 1000 ही मुकर्रर किया होगा। भाई, बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो जाहिर हाल खावंद की ताइद कर रहा है, लिहाजा खावंद का कौल मोतबर है। और अगर इस जैसी औरत का महरे मिसल 2000 या इससे ज्यादा होता है और औरत 2000 का दावा कर रही है, तो अब महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है कि जब इस जैसी औरत का महरे मिसल 2000 या 2000 से ज्यादा होता है, मालूम हुआ जाहिर हाल औरत की ताइद कर रहा है, यकीनन इसका महर भी 2000 ही होगा। तो जाहिर हाल जिसकी ताइद करे उसके कौल का एतबार किया जाएगा। और मैंने बतलाया था कि कौल उस शख्स का मोतबर होता है जो मुनकिर होता है, मुद्दाई के जिम्मे बयना है और मुनकिर का कौल मोतबर होता है कसम के साथ। जब खावंद और बीवी दोनों का कौल मोतबर है, बाज सूरतों में खावंद का कौल मोतबर, यानी जब महरे मिसल खावंद की ताइद कर रहा हो, और बाज सूरतों में बीवी का कौल मोतबर है, यानी जब महरे मिसल बीवी की ताइद कर रहा हो, मालूम हुआ दोनों खावंद और बीवी इस मसले में बाज एतबार से मुनकिर बन रहे हैं। बीवी मुनकिर है जब ही तो उसके कौल का एतबार होगा, खावंद मुनकिर है जब ही तो उसके कौल का एतबार होगा। तो जब दोनों में से हर एक मुनकिर है, तो मालूम हुआ दोनों में से हर एक मुद्दाई भी है, क्योंकि जब बीवी मुनकिर है मालूम हुआ खावंद मुद्दाई होगा, और जब खावंद मुनकिर है मालूम हुआ बीवी मुद्दाई होगी। तो मालूम हुआ इस मसले में दोनों में से हर एक मुद्दाई भी है और हर एक मुनकिर भी है, लिहाजा महरे मिसल जिसकी ताइद कर देगा उसके कौल का एतबार कर लेंगे, वो मुनकिर होगा भाई। वो मुनकिर होगा। और फिर अगर दोनों में से कोई एक भी बय्यिना पेश कर दे तो फिर उसके बय्यिना को कबूल कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों में से हर एक मुद्दाई है भाई। और अगर दोनों बय्यिना पेश कर देते हैं तो फिर उसका बय्यिना कबूल किया जाएगा जिसका बय्यिना जाहिर हाल के खिलाफ होगा। यानी अगर महरे मिसल औरत की ताइद कर रहा है तो फिर खावंद का बय्यिना कबूल कर लिया जाएगा, और अगर महरे मिसल खावंद के कौल की ताइद कर रहा है तो फिर बीवी का बय्यिना कबूल कर लिया जाएगा। और फिर उसके बाद अगर महरे मिसल दोनों मिकदारों के दरमियान में हो, यानी ना वो महरे मिसल 1000 है ना 2000 है बल्कि 1500 है, तो इस सूरत के अंदर इमाम अबू बकर जस्सास राजी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दोनों को कसम दी जाएगी, दोनों को कसम दी जाएगी। हो सकता है दोनों में से कोई एक इनकार कर दे तो दूसरे का दावा साबित हो जाएगा, मुसम्मा का पता चल जाएगा, और अगर दोनों कसम खा लेते हैं तो फिर माहरे मिसल पर यानी 1500 पर ही फैसला कर दिया जाएगा। जबकि इमाम अबुल हसन करखी रहमहुल्ला फरमाते हैं कि तीनों सूरतों में दोनों कसम खाएंगे, यानी चाहे महरे मिसल औरत की ताइद करे, चाहे महरे मिसल खावंद की ताइद करे, चाहे महरे मिसल दोनों मिकदारों के बीच में है यानी किसी एक की भी ताइद नहीं कर रहा, तीनों सूरतों में दोनों को कसम देंगे। वो फरमाते हैं वजह इसकी यह है कि जब दोनों को कसम दी जाएगी तो हो सकता है कोई एक कसम से इनकार कर दे, जब कोई एक कसम से इनकार कर देगा तो दूसरे का दावा साबित हो जाएगा और मुसम्मा का पता चल जाएगा। अगर बीवी ने इनकार किया तो खावंद का दावा साबित हो गया, मालूम हुआ मुसम्मा 1000 था तो मुसम्मा पर ही फैसला हो जाएगा। तो तीनों सूरतों में दोनों को कसमें देंगे ताकि हो सकता है कोई एक इनकार कर दे और महरे मिसल की तरफ जाने से पहले ही मुसम्मा का पता चल जाए, और अगर दोनों कसमें खा लेते हैं फिर उस सूरत में महरे मिसल की तरफ चले जाएंगे और उसको हकम बना देंगे, उसके जरिए फैसला करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये तो तरफैन के नजदीक था, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं कि यहां पर खावंद का कौल मोतबर है। तरफैन तो फरमाते थे कि महरे मिसल जिसकी ताइद करेगा उसका कौल मोतबर है, लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला फरमाते हैं नहीं, यहां हर हाल में खावंद ही का कौल मोतबर है, क्योंकि औरत ज्यादती का दावा कर रही है। 1000 का दावा खावंद कर रहा है और औरत 2000 का दावा कर रही है, तो औरत के 2000 में खावंद वाला 1000 भी आ गया और उससे जायद का भी वो दावा कर रही है, तो औरत ज्यादती की मुद्दई हुई और खावंद जो है इस ज्यादती का मुनकिर है, मुनकिर है। और कौल मुनकिर का मोतबर होता है, मुद्दई के जिम्मे तो बय्यिना होती है, लिहाजा यहां खावंद ही का कौल मोतबर होगा। और हम महरे मिसल की तरफ नहीं जाएंगे इसलिए क्योंकि महरे मिसल की तरफ तो उस वक्त जाते हैं जब मुसम्मा को वाजिब करना मुमकिन ना हो। जब मियां बीवी निकाह कर रहे हैं और उन्होंने कोई मुसम्मा जिक्र नहीं किया तो फिर हमें मजबूरन महरे मिसल की तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि निकाह में महर का आना तो जरूरी है। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं हर हाल में खावंद ही का कौल मोतबर है क्योंकि वो मुनकिर है, और महरे मिसल को फैसल नहीं बनाएंगे क्योंकि महरे मिसल तो जब मुसम्मा ना हो तब मजबूरी की वजह से और जरूरत की वजह से महरे मिसल आता है। तो यहां तो मुसम्मा जिक्र है, लिहाजा महरे मिसल की तरफ जाने की हाजत नहीं है। जबकि तरफैन फरमाते हैं कि दावों के अंदर उस शख्स का कौल मोतबर होता है जाहिर हाल जिसकी ताइद कर रहा हो, और जाहिर हाल तो उसी की ताइद करेगा महरे मिसल जिसकी ताइद कर रहा है। बात समझ में आ गई। मसलन औरत 2000 का दावा कर रही है और इस जैसी औरत का महर होता भी 2000 या इससे ज्यादा है, तो जाहिर हाल यही बतला रहा है इस जैसी औरत का जब इतना महर होता है तो यहां भी 2000 ही महर होना चाहिए भाई। तो जाहिर हाल उस शख्स की ताइद कर रहा है महरे मिसल जिसकी ताइद कर रहा है भाई। तो तरफैन के नजदीक जाहिर हाल जिसकी ताइद करेगा उसके कौल का एतबार किया जाएगा और महरे मिसल को फैसल बनाया जाएगा, उसके लिए फैसला किया जाएगा, क्योंकि निकाह का मुजब असली महरे मिसल है। निकाह असल में किसका तकाजा करता है, महरे मिसल का, मुसम्मा की तरफ हम मजबूरी की वजह से जाते हैं। एक शख्स और औरत निकाह कर रहे हैं तो असल में महरे मिसल ही आना चाहिए, लेकिन जब दोनों आपस में कोई महर मुकर्रर कर लेते हैं तो फिर इस मजबूरी की वजह से महरे मिसल नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों खुद एक मिकदार पर राजी हो गए हैं, मियां और बीवी खुद एक मिकदार पर राजी हो गए हैं, मुसम्मा पर राजी हो गए हैं, तो इस मजबूरी की वजह से अब महरे मिसल नहीं आ सकता, वरना यहां महरे मिसल ने ही आना था भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने बतलाया कि यहां पर जामे सगीर और मबसूत जो है उसके अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर खावंद का कौल मोतबर है। अगर खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी तो खावंद का कौल मोतबर है, ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं मबसूत में भी और जामे सगीर में भी। लेकिन जामे कबीर में वो फरमाते हैं कि मुता जो है उसको फैसल बनाया जाएगा, मुता के जरिए फैसला किया जाएगा। जैसे तलाक से पहले महरे मिसल को फैसल बनाया था, तवज्जो है, और जहां महरे मिसल आता है वहां अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी जाए तो वहां मुता आता है। तो अगर तलाक से पहले आप महरे मिसल को फैसल बना रहे हैं तो इस कौल का तकाजा यह है, इस कौल का कियास यह है कि तलाक के बाद मुता को फैसल बनाना चाहिए भाई। तवज्जो है। तो लिहाजा जामे कबीर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुता को फैसल बनाया जाएगा, और यही उनके कौल का कियास भी है कि जब तलाक से पहले वो महरे मिसल को फैसल बना रहे हैं तो तलाक के बाद मुता को फैसल बनाना चाहिए, उसके जरिए फैसला करना चाहिए। तो बज़ाहिर दोनों कौलों में तआरुज मालूम होता है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल से पता चला कि खावंद का कौल मोतबर है, मुता को उन्होंने फैसल नहीं बनाया। दूसरे कौल से, जामे कबीर के कौल से पता चला कि मुता को फैसल बनाया जाएगा। तो उसके बाद फिर साहिब हिदायत ने इन दोनों कौलों में तदबीक और तौफीक की सूरत बयान फरमाई। मैंने बतलाया था कि तदबीक और तौफीक इसे कहते हैं कि दो अकवाल जिनमें बजाहिर तआरुज और टकराव हो, ऐसी तौजीह करना, ऐसी तशरीह करना कि दोनों के दरमियान टकराव खत्म हो जाए, इसको तदबीक और तौफीक कहते हैं। तदबीक यानी दोनों कौलों को एक दूसरे के मुताबिक बनाना, तौफीक यानी दोनों कौलों को एक दूसरे के मुआफिक बनाना। तो वो फरमाते हैं कि असल में तो मुता ही को हकम बनाया जाएगा। तरफैन के कौल का तकाजा क्या है कि अगर सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर मुता ही को हकम बनाना चाहिए। तलाक से पहले अगर महरे मिसल को फैसल बनाया था तो सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो मुता ही को हकम बनाएंगे। लेकिन चूंकि मबसूत के अंदर यह मसला जिक्र है हजार और दो हजार के अंदर, तो अगर खावंद का कौल भी ले लिया जाए तो हजार दिरहम वो इकरार कर रहा है, और तलाक सोहबत से पहले दे दी जाए तो निस्फ मुसम्मा देना पड़ता है, तो गोया 500 दिरहम देने का तो खावंद भी एतराफ कर रहा है। और हालांकि मुता तो 500 दिरहम का नहीं होता, वो तो 15-20 दिरहम का होगा, तो लिहाजा यहां पर मुता की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, खावंद खुद ही 500 देने पर राजी है, तो फिर 500 ही औरत को दे दिया जाएगा। जबकि जामे कबीर के अंदर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने यह मसला जिक्र फरमाया है 100 और 10 में, और सोहबत से पहले तलाक दी है तो इनका निसफ आएगा। मालूम हुआ खावंद 5 दिरहम देना चाहता है और औरत 50 का मुतालबा कर रही है, और इस जैसी औरत का मुता तो मसलन 20 दिरहम का होता है। तो अब यहां पर मुता को फैसल बनाने का फायदा है। खावंद के कौल को लेते हैं, वो तो 5 दिरहम की बात कर रहा है, हालांकि इस औरत का मुता तो कितना होता है, 20 दिरहम का होता है, तो यहां मुता पर फैसला करने का फायदा है। जबकि मबसूत के मसले में मुता को हकम मुकरर कर भी दिया जाए फिर भी खावन जो है वो 500 दिरहम देने पर राजी है, जब वो खुद उसका एतराफ कर रहा है तो उसमें 500 ही खावन पर आएंगे। इसलिए वहां पर इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खावन के कौल का एतबार किया जाएगा, क्योंकि वो खुद राजी है भाई। तो लिहाजा मबसूत में जहां मसला हजार और दो हजार में जिक्र हुआ है वहां भी असल में तो मुता ही हकम है, लेकिन मुता को हकम बनाने का फायदा नहीं है। वहां पर भी असल में तो हकम मुता नहीं बनना था, लेकिन वहां मुता को हकम और फैसल बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि खावंद खुद जायद देने का इकरार कर रहा है तो फिर वो जायद ही दिया जाएगा। इसलिए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने वहां फरमाया कि खावंद का कौल मोतबर है। भाई अब आइए आज के सबक पर। कहते हैं वलौ कान अल इख्तिलाफ फी असलिल मुसम्मा यजिबु महरुल मिस्ल बिल इजमा। भाई ये पिछला मसला तो वो सूरत जिक्र थी जब महर की मकदार में मियां बीवी का इख्तिलाफ आया था। अब वो सूरत जिक्र करेंगे कि जब असले मुसम्मा के अंदर ही इख्तिलाफ आ जाए। बीवी कहती है महर मुकर्रर किया था और खावन कहते हैं नहीं, हमने निकाह में सिरे से कोई महर मुकर्रर ही नहीं किया था, तो असले मुसम्मा ही में इख्तिलाफ आ गया। एक उसको जिक्र कर रहा है और दूसरा उसका इनकार कर रहा है। तो इस सूरत में कहते हैं बिल इतफाक महरे मिसल वाजिब होगा। जब असले मुसम्मा के अंदर इख्तिलाफ आ जाए, एक कहता है मुसम्मा था, दूसरा कह रहा है कोई मुसम्मा नहीं था, तो इस सूरत में हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं महरे मिसल वाजिब किया जाएगा, खावन महरे मिसल अदा करेगा। तो कहते हैं वलौ कान अल इख्तिलाफ फी असलिल मुसम्मा, और अगर इख्तिलाफ जो था वो असले मुसम्मा में था। फिर इसमें याद रखो दो सूरतें हैं, मसलन बीवी कहती है मुसम्मा था और खावन कहता है मुसम्मा नहीं था, फिर इसमें हो सकता है बीवी मकदार भी जिक्र करे कि मसलन 2000 मुकर्रर किया था और खावन कहते हैं नहीं, सिरे से महर मुकर्रर ही नहीं किया था, या मकदार तो बीवी को भी नहीं याद, हां वो कहती है मकदार तो मुझे नहीं याद लेकिन इतना मुझे याद है कुछ महर हमने मुकर्रर किया था। बहरहाल दोनों सूरतों में जब औरत मुसम्मा को जिक्र कर रही है, चाहे मकदार जिक्र करे या ना करे, मसला एक ही रहेगा, महरे मिसल वाजिब होगा। भाई तो कहते हैं वलौ कान अल इख्तिलाफ फी असलिल मुसम्मा, और अगर यह इख्तिलाफ जो था असले मुसम्मा के अंदर था, यजिबु महरुल मिसल बिल इजमाई, तो फिर महरे मिसल वाजिब होगा बिल इतफाक। भाई इजमा से क्या मुराद है, हमारे अइम्मा का इतफाक मुराद है, तो हमारे तीनों अइम्मा के नजदीक यहां महरे मिसल वाजिब होगा। क्यों महरे मिसल क्यों वाजिब होगा, कहते हैं लिअन्नहु हुवल असलु इंदहुमा, इसलिए क्योंकि महरे मिसल ही असल है तरफैन के नजदीक। वाइंदहू और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी महरे मिसल आएगा। कहते हैं वाइंदहू तअज्जर अल क़ज़ाउ बिल मुसम्मा, के मुसम्मा पर फैसला करना मुतअज्जिर हो गया, मुसम्मा पर फैसला करना मुतअज्जिर हो गया, मुमकिन ना रहा। औरत वो मुसम्मा जिक्र कर रही है लेकिन खावन तो मुसम्मा का इनकार कर रहा है, तो मुसम्मा को वाजिब नहीं किया जा सकता, और जब मुसम्मा को वाजिब न किया जा सके तो फिर मजबूरन किसकी तरफ जाना पड़ता है, महरे मिसल की तरफ। तो तरफैन के नजदीक भी महरे मिसल, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी महरे मिसल है। भाई अलबत्ता उसकी दलील में इख्तिलाफ है, तरफैन के नजदीक महरे मिसल क्यों आएगा, क्योंकि यह मूजब असली है। ये महरे मिसल क्या है, निकाह का मूजब असली है, मुक्तज़ाए असली है। भाई निकाह असल में महरे मिसल ही का तकाजा करता है, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक भी महरे मिसल आएगा, लेकिन उनकी दलील अलग है। वो फरमाते हैं चूंकि अब मुसम्मा को वाजिब नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें इख्तिलाफ आ रहा है, तो फिर मजबूरन हमें किसकी तरफ जाना पड़ेगा, महरे मिसल की तरफ। तो महरे मिसल के अंदर तो अइम्मा का इत्तेफाक, लेकिन उसकी दलील में अइम्मा का इख्तिलाफ है। याद रखो इसको इजमाए मुरक्कब कहते हैं। क्या कहते हैं, इजमाए मुरक्कब, यानी एक हुक्म पर अइम्मा मुत्तफिक हैं लेकिन दलील हर एक की अलग अलग है। भाई तो इजमा तो है लेकिन इजमाए मुरक्कब है कि दलील अलग अलग है। भाई तो कहते हैं फिर दलील देख लीजिए, लिअन्नहु हुवल असलु इंदहुमा, इसलिए क्योंकि महरे मिसल जो है वो असल है तरफैन के नजदीक। वाइंदहु तअज्जर अल क़ज़ाउ बिल मुसम्मा, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नजदीक मुसम्मा के साथ फैसला करना मुतअज्जिर हो गया, मुमकिन न रहा। फयुसारु इलैहि, लिहाजा रुजू किया जाएगा महरे मिसल की तरफ। वलौ कान अल इख्तिलाफ बाद मौत अहदिहिमा, और अगर ये इख्तिलाफ दोनों में से किसी एक की मौत के बाद हुआ, फल जवाब फी ही कल जवाब फी हयातिहिमा, तो इस सूरत में जो जवाब है कल जवाब फी हयातिहिमा, ये उसी जवाब की तरह है जो इन दोनों की जिंदगी में था। दोनों में से अगर किसी एक का इंतकाल हो गया तो भी मसला उसी तरह होगा जैसे दोनों की जिंदगी में था, चाहे ये इख्तिलाफ मिकदार में हो चाहे असल मुसम्मा में हो, भाई तो भी मसला उसी तरह होगा। दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है, दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर इख्तिलाफ कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो अगर ये इख्तिलाफ मिकदार के अंदर है तो तरफैन के नजदीक महरे मिसल को हकम बनाएंगे और महरे मिसल जिसके कौल की ताइद करेगा उसका कौल मोतबर होगा। वो सारी तफसील जो पीछे बयान हो गई, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे, खावंद का कौल मोतबर होगा और अगर खावंद का इंतकाल हो गया है तो खावंद के वारिसों का कौल मोतबर होगा। यह तो था मिकदार में अगर इख्तिलाफ हो, और अगर असल मुसम्मा के अंदर इख्तिलाफ आया है, दोनों में से एक का इंतकाल हो चुका है, तो फिर इस सूरत में बिल इतफाक महरे मिसल आता था, अभी पढ़ा आपने। तो यहां पर भी अगर असल मुसम्मा में इख्तिलाफ है, मियां बीवी में से एक का इंतकाल हो चुका है और उसके वारिस आकर दूसरे के साथ इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो इस सूरत में इख्तिलाफ जब असल मुसम्मा में हो तो महरे मिसल ही आएगा। तो जिंदगी में असल मुसम्मा में इख्तिलाफ आए तो भी महरे मिसल, और दोनों में से एक के इंतकाल के बाद असल मुसम्मा में इख्तिलाफ आए तो भी महरे मिसल ही वाजिब होगा। बात समझ में आ गई। बस हासिल यह है कि जैसे पीछे सूरतें जिक्र हुई, दोनों में से एक मर जाए तब भी वही सूरतें हैं भाई। तो कहते हैं वलौ कान अल इख्तिलाफ बाद मौत अहदिहिमा, और अगर यह इख्तिलाफ दोनों में से किसी एक की मौत के बाद हुआ, फल जवाब फीही कल जवाब फी हयातिहिमा, तो इसके अंदर भी जवाब जो है उसी की तरह होगा जैसे कि जवाब था दोनों की जिंदगी में। लिअन्न एतबार महरिल मिसली ला यस्कुतु बिमौति अहदिहिमा, इसलिए क्योंकि महर मिसल का एतबार साकित नहीं होता दोनों में से किसी एक के मर जाने से। दोनों की जिंदगी में महर मिसल का हम एतबार करते थे, तो दोनों में से अगर एक मर भी जाए फिर भी महरे मिसल का एतबार साकित नहीं, महरे मिसल का ही एतबार किया जाएगा। आगे आपको बताएंगे भाई, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के नजदीक अगर दोनों का इंतकाल हो गया है फिर महरे मिसल का कोई एतबार नहीं। आगे आपको साहिबे हिदाया बताएंगे कि अगर मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो गया है, अब बीवी के वारिस और खावंद के वारिस उनका आपस में इख्तिलाफ हो रहा है, तो अब महरे मिसल का कोई एतबार नहीं। लेकिन यहां तो बताया दोनों में से एक का इंतकाल हुआ है, जब एक का इंतकाल हुआ है तो एक के मरने से महरे मिसल का एतबार साकित नहीं होता, उसी पर फैसला किया जाएगा। यह माना है लियन एतबार महरिल मिसली लायस कुतुबी मौती अहदिहिमा, इसलिए क्योंकि महरे मिसल का एतबार दोनों में से किसी एक की मौत की वजह से साकित नहीं होता। वलव कान अल इख्तिलाफ बाद मौतिहिमा फिल मिकदारी, अब आ गई दोनों की मौत की सूरत। कहते हैं वलव कान अल इख्तिलाफ बाद मौतिहिमा, और अगर इख्तिलाफ हुआ दोनों की मौत के बाद, फिल मिकदारी, और यह इख्तिलाफ किस में है, मिकदार में है। फल कौलू कौलू वरसती जौज इंदा अबी हनीफा रहमहुल्ला, तो खावंद के जो वारिस हैं उनका कौल मोतबर है इमाम साहेब के नजदीक। भाई जिंदगी में जब मिकदार में इख्तिलाफ होता था तो तरफेन महरे मिसल को हकम बनाते थे, लेकिन जब दोनों का इंतकाल हो गया और मिकदार में इख्तिलाफ है तो दोनों के इंतकाल के बाद इमाम साहिब के नजदीक महरे मिसल का एतबार नहीं किया जाएगा। जब महरे मिसल का एतबार नहीं है, आप उसको हकम नहीं बना रहे, तो अब इमाम साहब फरमाते हैं कि खावंद के जो वारिस हैं उनके कौल का एतबार किया जाएगा, क्योंकि बीवी के वारिस ज्यादती का दावा कर रहे हैं और खावंद के वारिस ज्यादती का इनकार कर रहे हैं और मुनकिर का कौल मोतबर होता है, लिहाजा खावंद के जो वारिस हैं उनका कौल मोतबर होगा। और नीज पीछे मसला जिक्र हुआ था, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तमाम सूरतों में खावंद का कौल मोतबर है, तवज्जो है, लेकिन वो शय कलील का इस्तिस्ना करते थे कि अगर खावन ने कोई बहुत थोड़ी चीज जिक्र कर दी कि इस जैसी औरत तो इतने महर पर निकाह में राजी नहीं होती, तो फिर इस सूरत में वो फरमाते थे खावन के कौल का एतबार नहीं है, जब वो शय कलील बयान कर दे। मालूम हुआ इमाम अबी यूसुफ रहमतुल्लाह जो हैं शय कलील का इस्तिस्ना करते थे, खावन का कौल मोतबर है लेकिन शय कलील का इस्तिस्ना कर दिया, अगर वो खावन बयान करता है तो फिर खावन के कौल का एतबार नहीं है। तो यहां पर इमाम साहब फरमा रहे हैं जब दोनों मर गए तो फिर खावंद के वारिसों का कौल मोतबर है, और इमाम साहब शय कलील का भी इस्तिस्ना नहीं करते। इमाम साहब शय कलील का भी इस्तिस्ना नहीं करते, वो शय कलील ही क्यों ना बयान कर दें, फिर भी कसम के साथ खावंद के वारिसों का कौल मोतबर होगा। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलौ कान अल इख्तिलाफ बाद मौत ही माफिल मिकदारी, और अगर ये इख्तिलाफ खावंद और बीवी दोनों की मौत के बाद हुआ, फिल मिकदारी महर की मिकदार में, फल कौलु कौलु वरसति ज़ौज इंद अबी हनीफत रहमहुल्ला, तो खावंद के वारिसों का कौल मोतबर है इमाम साहेब के नजदीक। वला यस्तस्निल कलीला, और इमाम साहेब इस्तिस्ना नहीं फरमाते कलील का भी। तो वला यस्तस्निल कलीला, यस्तस्नी के अंदर जमीर लौटा दें इमाम साहेब की तरफ, और अल कलीला इसके लिए मफूल बना दें। वला यस्तस्निल कलीला, और इमाम साहेब इस्तिस्ना नहीं फरमाते कलील का, या इसको फिले मजहूल पढ़ लें, वला युस्तस्नल कलीलो, कलील को नाई फाइल बना दें, और कलील का इस्तेसना भी नहीं किया जाएगा। दोनों सूरतों में इबारत ठीक है भाई। ये वो सूरत है जब दोनों का इंतकाल हो चुका है और मिकदार में इख्तिलाफ आया। अब वाइंद अबी यूसुफ रहमहुल्ला अल कौलु कौलुल वरासती, के इमाम यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक जो है वही खावंद के वारिसों का कौल मोतबर है। इल्ला अय्या अतू बिशय इन कलीलिन, मगर यह कि वो थोड़ी सी चीज लाएं, यानी थोड़ी सी चीज को जिक्र करें। तो इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला और इमाम साहब का कौल एक जैसा है। इमाम साहब भी फरमाते हैं खावंद के वारिसों का कौल मोतबर, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला भी फरमाते हैं खावंद के वारिसों का कौल मोतबर है। हां, फर्क यह है कि इमाम साहब कलील का इस्तिस्ना नहीं फरमाते, जबकि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला कलील का इस्तिस्ना फरमाते हैं कि अगर खावंद के वारिसों ने कोई बहुत थोड़ी चीज जिक्र कर दी तो फिर उनका कौल मोतबर नहीं है। तो कहते हैं वाइंद अबी यूसुफ रहमहुल्ला, और इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्ला के नजदीक अल कौल कौलुल वरासते, के इसी खावन के वारिसों का कौल ही मोतबर है। इल्ला अय्या तू बिशय इन कलील, मगर यह कि वो कोई थोड़ी सी चीज जिक्र करें। वाइंद मोहम्मद इन रहमहुल्ला, और इमाम मोहम्मद रहमहुल्ला के नजदीक अल जवाब फी ही कल जवाब फी हालतिल हयाती, कि इसके अंदर भी जवाब उसी तरह है जैसे कि जवाब था जिंदगी की हालत में। जिंदगी की हालत में वो महरे मिसल को हकम बनाते थे, तो यहां पर भी जब दोनों का इंतकाल हो चुका है वो महरे मिसल ही को हकम करार देते हैं। वह इनकान अफी असलिल मुसम्मा, और अगर इख्तिलाफ असले मुसम्मा में हुआ, भाई ये सूरत क्या चल रही थी, दोनों का इंतकाल हो चुका है और इख्तिलाफ मिकदार में है, तो फिर खावंद के वारिसों का कौल मोतबर है इमाम साहिब के नजदीक। और अगर दोनों का इंतकाल हो चुका है और इख्तिलाफ असले मुसम्मा में आया, बीवी के वारिस कहते हैं मुसम्मा था और खावंद के वारिस कहते हैं मुसम्मा नहीं था, असले मुसम्मा के अंदर ही इख्तिलाफ आ गया वारिसों का, भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इनका नफी असले मुसम्मा, और अगर ये इख्तिलाफ दोनों के मरने के बाद असले मुसम्मा में था, फाइंदा भी हनीफत रहमहुल्ला अल कौल कौल मन अनकरहू, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि उसका कौल मोतबर है जो इसका इनकार कर रहा है, जो मुसम्मा का इनकार कर रहा है उसका कौल मोतबर है। मसलन बीवी के वारिस कह रहे हैं मुसम्मा था, और खावन के वारिस क्या कह रहे हैं, मुसम्मा नहीं था, निकाह में कोई महर मुकरर किया ही नहीं था, तो ये मुनकिर हुए, लिहाजा इनका कौल मोतबर है। और याद रखो इस सूरत के अंदर इनके कौल पर फैसला किया जाएगा और बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा, महरे मिसल भी नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि दोनों के मरने के बाद इमाम साहब के नजदीक महरे मिसल का एतबार है ही नहीं। तवज्जो है, इमाम साहब के नजदीक मियां और बीवी दोनों जिंदा हो या दोनों में से एक जिंदा हो फिर तो महरे मिसल का एतबार है, अगर दोनों मर जाएं फिर महरे मिसल का कोई एतबार नहीं। चुनांचे वो फरमाते हैं अगर असले मुसम्मा में वारिसों का इख्तिलाफ आ गया, मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो चुका है, तो फिर उसका कौल मोतबर होगा जो मुसम्मा का इनकार कर रहा है, और जब वो इनकार कर रहा है कि कोई महर मुकरर नहीं किया था तो अब मुसम्मा भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मौत, क्योंकि दोनों मर चुके हैं और दोनों के मरने के बाद महरे मिसल का एतबार नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फाइंद अबी हनीफा रहमहुल्ला अल कौल कौल मन अनकारहु, के कौल उसका मोतबर है जो मुसम्मा का इनकार कर रहा है। तो इमाम साहब के नजदीक अगर खावंद के वारिस कसम खा लेते हैं तो फिर बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन साहिबैन फरमाते हैं कि महरे मिसल पर फैसला किया जाएगा। किस पर? महरे मिसल पर फैसला किया जाएगा और इसी पर फतवा है। भाई इमाम साहब के नजदीक तो बीवी के वारिसों को इस सूरत में कुछ नहीं मिलेगा जब खावंद के वारिसों ने कसम खा ली इनकार पर, लेकिन साहिबैन क्या फरमाते हैं कि महरे मिसल उनको दिलाया जाएगा भाई, और साहिबैन के कौल पर ही फतवा है भाई। फल हासिलु, तो हासिल कलाम यह है अन्नहु ला हुक्म ली महरिल मिसली, के महरे मिसल का कोई हुक्म नहीं है इंदहु इमाम साहब के नजदीक बाद मौती ही मां, खावंद और बीवी दोनों के दोनों की मौत के बाद। अला मानुबयिनहु, उस वजह से जो हम बयान करेंगे मिम बादु बाद में इंशा अल्लाह। तर्जमा फिर देख लीजिए, फल हासिलु, हासिल यह है अन्नहु ला हुक्म ली महरिल मिसल इंदहु बाद मौती ही मां, कि महरे मिसल का कोई हुक्म नहीं है इमाम साहिब के नजदीक मियां बीवी दोनों के मर जाने के बाद। अला मानुबयिनहु मिम बादु इंशाअल्लाह, उस वजह से जो बाद में हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे। ये अभी दो तीन सत्रों के बाद ही साहिब हिदाया बयान करेंगे कि इमाम साहब फरमाते हैं जब दोनों मर जाए तो फिर इस सूरत में महरे मिसल का कोई एतबार नहीं है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए, कहते हैं वह ईदा माता जौजानी वकत सम्मा लहा महरन फली वरसती हा अय हुदूदालिका मिम्मीरासी ही व इल्लम युसम्मी लहा महरन फला शई अली वरसती हा इंद अबी हनीफत रहिमहुल्लाह। भाई वो इख्तिलाफ वाली सूरत खत्म हो गई, मियां बीवी में इख्तिलाफ हुआ था तो फिर या तो मिकदार में इख्तिलाफ होगा या असले मुसम्मा में इख्तिलाफ होगा, और यह इख्तिलाफ दोनों की जिंदगी में होगा या दोनों में से एक के मर जाने के बाद होगा या दोनों के मर जाने के बाद होगा। यह सारी सूरतें गुजर गई, आप दूसरी अलग सूरत जिक्र कर रहे हैं भाई, अब अलग मसला बयान कर रहे हैं। कहते हैं वह ईदा माता जौजानी, सूरत मसला यह मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो गया है और बीवी ने महर वसूल नहीं किया था, तो क्या आप बीवी के वारिस खावंद के वारिसों से महर वसूल कर सकते हैं? तो आपको बताएंगे कि हां वो महर वसूल कर सकते हैं। कहते हैं वह ईदा माता जौजानी, और जब मियां बीवी दोनों मर गए वकद सम्मा लहा महरन, और तहकी खावंद ने उसके लिए महर मुकरर किया था फली वरसतिहा अय्या हुदूदालिका मिम मीरासी ही, तो औरत के वारिसों के लिए जायज है कि वो उस महरे मुसम्मा को ले लें मिम मीरासी ही खावंद की मीरास में से। याद रखो ये जो महर होता है ये खावंद के जिम्मे दैन है और दैन की अदायगी वरासत जारी करने से पहले होती है। वारिसों में माल बाद में तकसीम किया जाता है, पहले दुयून को अदा किया जाता है, लिहाजा औरत का हिस्सा निकालकर उसके वारिसों को दिया जाएगा, फिर उसके बाद खावंद की मीरास तकसीम की जाएगी भाई। तो कहते हैं फली वरसती हा अय्या खुदू दालिका मिम मीरासी ही, तो औरत के वारिसों के लिए जायज है कि वो उस महरे मुसम्मा को ले लें खावंद की मीरास में से। वह इल्लम युसम्मी लहा महरन फला शई अली वरसतिहा, और अगर खावन ने बीवी के लिए महर मुकरर नहीं किया था फला शई अली वरसतिहा इंद अबी हनीफत रहमहुल्ला, तो इमाम साहब के नजदीक बीवी के वारिसों के लिए कोई चीज नहीं होगी। भाई अगर दोनों ने महर मुकरर नहीं किया था तो फिर क्या आया करता है महरे मिसल, लेकिन दोनों का इंतकाल हो चुका है और दोनों के इंतकाल के बाद तो इमाम साहब के नजदीक महरे मिसल का कोई एतबार नहीं, लिहाजा इस सूरत में खावंद के बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों का इंतकाल हो चुका है और महरे मिसल पर हम फैसला नहीं कर सकते। तो यह माना है वह इल्लम युसम्मी लहा महरन, और अगर खावन ने उसके लिए महर मुकरर नहीं किया था फला शही अली वरसतिहा इंदा अबी हनीफत रहमला, तो कोई चीज नहीं होगी उस औरत के वारिसों के लिए इमाम साहब के नजदीक। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लिवरसतिहल महरुफिल वजहैन, के औरत के वारिसों के लिए महर होगा दोनों सूरतों में, यानी अगर मुसम्मा मुकरर किया था तो मुसम्मा देना पड़ेगा, और अगर मुसम्मा मुकरर नहीं किया था तो फिर महरे मिसल देना पड़ेगा। औरत के वारिसों को हर हाल में महर मिलेगा, या मुसम्मा या महरे मिसल। भाई तो कहते हैं वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लिवरसती हल महरूफिल वजहें, कि औरत के वारिसों के लिए महर होगा दोनों सूरतों में, यानी दोनों सूरतों में, यानी महर मुकरर किया हो या मुकरर न किया हो। माना हूं, माना यह है इसके अल मुसम्मा फिल वजहिल अव्वली, यानी मुसम्मा मिलेगा पहली सूरत में, यानी जब महर मुकरर किया था। वह महरुल मिसल फिस सानी, और महरे मिसल मिलेगा दूसरी सूरत में, यानी जब महर मुकरर नहीं किया था। अब भाई महरे मुसम्मा क्यों देंगे और महरे मिसल क्यों देंगे, दलील आगे जिक्र करेंगे। दलील आप जाहिर है भाई, जब मुसम्मा मुकरर किया था तो वो खावन के जिम्मे देन है भाई, और देन की अदायगी की जाती है, लिहाजा खावन के माल में से वो देन दिलाया जाएगा औरत के वारिसों को। और अगर महरे मुसम्मा नहीं था तो महरे मिसल आता है, और महरे मिसल भी खावन के जिम्मे देन होता है, लिहाजा उसकी भी अदायगी करना पड़ेगी। तो कहते हैं अम्मल अव्वल, तो पहला जो है यानी मुसम्मा क्यों देना पड़ेगा, उसकी वजह यह है फली अन्नल मुसम्मा दैन उन फी जिम्मती ही, इसलिए क्योंकि वो मुसम्मा जो है यानी महरे मुकर्ररा जो है वो दैन है, फी जिम्मती ही खावन के जिम्मा में। वक़त तअक्कदा बिल मौती, और ये दैन पक्का हो गया मौत की वजह से। आप जानते हैं भाई कि जब एक शख्स किसी औरत से निकाह करता है, या तो वह महर मुकरर करेगा या मुकरर नहीं करेगा। अगर मुकरर किया है तो वही महर आ जाएगा, और अगर मुकरर नहीं किया तो महरे मिसल आता है। और आपने यह भी पढ़ा है कि जब महर मुकरर किया है तो जब तक सोहबत नहीं की वह महर अभी पक्का नहीं, तो सोहबत करने से भी मुसम्मा पक्का हो जाता है, सारा देना पड़ेगा। और अगर सोहबत से पहले खावंद का या बीवी का इंतकाल हो जाए तो इस सूरत में भी वो सारा मुसम्मा देना पड़ता है, क्योंकि जब खावन या बीवी में से एक का इंतकाल हो गया तो मालूम हुआ निकाह अपने इख्तिताम को पहुंच गया। जब निकाह अपने इख्तिताम को पहुंच गया तो निकाह के सारे अहकाम अब पक्के हो गए, अब तलाक वगैरह की कोई सूरत नहीं। तवज्जो है, निकाह किया है अभी सोहबत नहीं की, तो अगर जिंदगी होती तो फिर तो तलाक दे सकते थे और ये मुसम्मा आधा हो जाता। सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो मुसम्मा आधा हो जाता है, लेकिन जब यह खामन या बीवी में से एक का इंतकाल हो गया है तो अब उस मुसम्मा के आधा होने की भी कोई सूरत नहीं है, अब पूरा मुसम्मा ही देना पड़ेगा। और अगर महर मिसल आया था यानी निकाह में महर मुकरर ही नहीं किया था, तो इस सूरत में भी अगर खामन सोहबत कर ले तो भी महरे मिसल पक्का हो जाता है, और अगर सोहबत से पहले ही खावंद या बीवी का इंतकाल हो जाए तो भी महरे मिसल पक्का हो जाता है। यही बयान फरमा रहे हैं, कहते हैं फली अन्नल मुसम्मा दैन उनफी जिम्मती ही, इसलिए क्योंकि मुसम्मा जो है वो दैन है खावंद के जिम्मा में। वक़त तअक्कदा बिल मौती, और नीज ये मुसम्मा पक्का हो गया है मौत की वजह से, मौत की वजह से पक्का हो गया है। फयुक्ज़ा मिन तरीकती ही, लिहाजा यह अदा किया जाएगा खावंद के तरके में से। तरीकती ही, यह रा के नीचे कसरा पढ़ना भी सही और रा को साकिन पढ़ना भी सही है, तरकती ही और तरीकती ही। अलबत्ता रा के नीचे कसरा पढ़ना आला लुगत है भाई। फयुक्ज़ा मिन तरीकती ही, लिहाजा ये दैन अदा किया जाएगा खावन के तरके में से। इल्ला इदा उलिमा अन्नहा मातत अव्वलन, मगर यह कि जब यह मालूम हो कि औरत पहले मरी है, औरत का इंतकाल पहले हुआ है। फयस्कुतु नसीबुहु मिन ज़ालिका, तो खावन का हिस्सा साकित हो जाएगा उसमें से। भाई देखिए, मियां बीवी एक दूसरे के वारिस बनते हैं, अगर खावन का पहले इंतकाल हुआ है तो बीवी उसकी वारिसा बनेगी, और अगर बीवी का पहले इंतकाल हुआ है तो खावंद उसका वारिस बनेगा। तो यहां चार सूरतें बनती हैं, या तो दोनों का इंतकाल इकट्ठा हुआ होगा, जब दोनों का इंतकाल इकट्ठा हुआ है तो कोई भी एक दूसरे का वारिस नहीं बनेगा। वजह यह कि वारिस वो बनता है जो मौत के वक्त जिंदा हो, खावंद का इंतकाल हुआ और बीवी जिंदा है तो बीवी उसकी वारिस बनेगी। अगर बीवी का इंतकाल पहले ही हो चुका है अब तो वो जिंदा ही नहीं है तो वो वारिसा भी नहीं बनेगी। मालूम हुआ वारिस वो बनता है जो मूरिस की मौत के वक्त जिंदा हो। तो अगर खावंद और बीवी दोनों का इंतकाल इकट्ठा हुआ है तो इस सूरत में दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे, क्योंकि वारिस वो बनता है जो मौत के वक्त जिंदा हो भाई। या ये पता ही नहीं है कि दोनों में से पहले कौन मरा है, मसलन जलजला आया था और कमरा दोनों पर गिरा और दोनों का इंतकाल हुआ, तो हो सकता है एक का इंतकाल जरा पहले हुआ हो और एक का इंतकाल जरा बाद में हुआ हो, तो जिसका इंतकाल बाद में हुआ है वो वारिस बनेगा। लेकिन यहां पता ही नहीं है भाई किसका इंतकाल पहले हुआ है, तो लिहाजा इस सूरत में भी दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। दोनों का अगर इंतकाल इकट्ठा हुआ है तब भी वारिस एक दूसरे के नहीं बनेंगे, और अगर यह पता ही नहीं है कि पहले किसका इंतकाल हुआ है तो इस सूरत में भी दोनों एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। तीसरी सूरत यह है कि खावंद का इंतकाल पहले हुआ है, खावंद का इंतकाल पहले हुआ है, तो फिर इस सूरत में बीवी उसकी वारिसा बनेगी, लेकिन वरासत मिलने से पहले बीवी को पूरा महर भी दिलाया जाएगा, क्योंकि महर देन होता है खावंद के जिम्मे में और देन वरासत की तकसीम से पहले अदा किया जाता है। और अगर इसका बरअक्स हुआ, बीवी का पहले इंतकाल हुआ है, तो इस सूरत में खावंद इसका वारिस बनेगा। जब खावंद इसका वारिस बन रहा है तो बीवी को महर अदा तो करना ही है, वो देन था खावंद के जिम्मे में, वो खावंद के जिम्मे देन है, लेकिन बीवी का पहले इंतकाल हुआ तो खावंद उसका वारिस बन गया। मालूम हुआ औरत के माल में खावंद का हक आ गया, तो जब बीवी का पहले इंतकाल हुआ हो तो खावंद उसका वारिस बनता है। जब वारिस बनता है तो जो हिस्सा खावंद का बनता था वो देन में से कम हो जाएगा। मसलन महर था 2000, बीवी का पहले इंतकाल हो गया तो खावंद उसका वारिस बन गया, और औरत के माल में से जब हिसाब लगाया गया तो खावंद का हिस्सा 500 दिरहम बन रहा है, तो खावंद का हिस्सा 500 दिरहम उस महर में से कम कर देंगे। बीवी के वारिसों को कितना देना था? 2000 देना था महर का, लेकिन उसमें से 500 किसका हिस्सा बनता है? नहीं तवज्जो, नहीं तवज्जो भाई, सूरत यह है ना, बीवी का पहले इंतकाल हुआ है, बीवी का चाहे पहले इंतकाल हो या बाद में इंतकाल हो, महर अदा करना है उसके वारिसों को, तो महर तो बीवी के वारिसों को अदा करना है, लेकिन जब बीवी पहले मरी है तो खावंद उसका वारिस बना है, तो बीवी के माल में खावंद का भी हिस्सा आ गया, तो खावंद का हिस्सा वसूल कर लिया जाएगा, वो काट लिया जाएगा, और बाकी का महर बीवी के वारिसों को दे दिया जाएगा। सूरत समझ में आ गई? तो ये बयान कर रहे हैं इल्ला इदा उलीमा, मगर जब ये मालूम हो अन्नहा मातत अव्वलन, के औरत पहले मरी है, फयस्कुतु नसीबुहु मिन ज़ालिका, तो खावंद का हिस्सा जो है यानी वरासत में जो खावंद का हिस्सा बनता था वो साकित हो जाएगा उस महर में से। सूरत भी समझ में आई कि नहीं? व अम्मसानी, और दूसरी सूरत जो है यानी साहिबैन क्या फरमाते थे, मियां बीवी दोनों का इंतकाल हो चुका है तो भी साहिबैन फरमाते हैं बीवी के वारिसों को महर जरूर मिलेगा भाई, अगर मुसम्मा था तो मुसम्मा मिल जाएगा, अगर मुसम्मा नहीं था तो फिर महरे मिसल मिल जाएगा। तो मुसम्मा क्यों मिलेगा, वो वजह बयान कर दी, क्योंकि वो खावंद के जिम्मे देन है। अब वजह जिक्र कर रहे हैं महरे मिसल क्यों मिलेगा, अगर मुसम्मा नहीं था तो फिर क्या मिलेगा बीवी के वारिसों को, महरे मिसल। अब उसकी वजह तो कहते हैं अम मसानी, और दूसरा है यानी महरे मिसल जो है फवज हु कौली हिमा, तो उसमें साहिबैन के कौल की वजह यह है कि अन्ना महरल मिसल सारा दैनन फी जिम्मति ही कल मुसम्मा, कि महरे मिसल भी वो दैन हो गया है खावन के जिम्मे में जैसे मुसम्मा था, फलायस कुतुबिल मौती, तो लिहाजा ये दैन भी साकित नहीं होगा मौत की वजह से, कमा इदा माता अहदुहुमा, जैसे दोनों में से कोई एक मर जाए, जब जैसे दोनों में से कोई एक मरता है तो इस सूरत में भी वो महरे मिसल साकित नहीं होता, दोनों के मरने से भी वो महरे मिसल साकित नहीं होगा, वो दैन है, वो खावंद के माल में से लेकर बीवी के वारिसों को दिलाया जाएगा। वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, अब इमाम साहब की बात आ गई, इमाम साहब क्या फरमाते थे, जब दोनों का इंतकाल हो जाए तो महरे मिसल का कोई एतबार नहीं, वजह क्या, वजह यह इमाम साहब फरमाते हैं कि भाई देखो महरे मिसल का पता किससे चलाया जाता है, उसी जैसी औरत के जरिए, उसी जैसी औरत के जरिए महर का पता चलाया जाता है, और जब मियां और बीवी दोनों का इंतकाल हो चुका है, जब दोनों का इंतकाल हुआ है मालूम हुआ जमाना गुजर चुका है, अब काजी महरे मिसल का पता कैसे चलाएगा भाई, महरे मिसल का पता कैसे चलाते हैं? उसी जैसी औरत के साथ अंदाजा लगाया जाता है। तो जब ये खावंद और बीवी दोनों मर चुके हैं तो मालूम हुआ इनके जो हम उम्र हैं वो भी मर गए होंगे। जब इनके हम उम्र भी मर चुके हैं तो अब महरे मिसल का अंदाजा किससे लगाएगा काजी भाई? महरे मिसल का अंदाजा लगाने की कोई सूरत ही नहीं है, लिहाजा इसलिए महरे मिसल साकित है भाई। भाई ये तो आजकल है, अचानक एक्सीडेंट होता है, हादसा होता है, मियां बीवी का इकट्ठा इंतकाल हो गया जवानी के अंदर ही। कदीम जमाने में तो इस तरह हादसात नहीं होते थे भाई। तो वहां पर अगर हादसा हुआ भी, बीवी या खावंद में से एक का इंतकाल हो जाता था, दूसरा तो जिंदा रहता था भाई। तो लिहाजा खावंद का भी जब इंतकाल होगा बूढ़ा हो जाने के बाद, तो फिर तो काफी अरसा गुजर गया। जब खावंद भी मर चुका, बीवी भी मर चुकी, मालूम हुआ इनके हम उम्र भी सारे मर चुके हैं, तो अब काजी महरे मिसल का अंदाजा किस तरह लगाएगा भाई? तो अब महरे मिसल का अंदाजा लगाने की कोई सूरत ही नहीं है, लिहाजा इसलिए दोनों के मरने के बाद महरे मिसल का कोई एतबार नहीं, काजी उसका अंदाजा लगा ही नहीं सकता, कोई सूरत ही नहीं है। हां अगर अगर महरे मिसल का अंदाजा लगाने की सूरत हो तो फिर इस सूरत में महरे मिसल का एतबार किया जाएगा। जैसे मसलन मैंने सूरत जिक्र कर दी कि जलजला आया और छत गिर गई और दोनों खावंद और बीवी का इंतकाल हो गया, तो अब इनके हम उम्र तो अभी जिंदा हैं, तो अभी तो महरे मिसल का अंदाजा लगाया जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो जब महरे मिसल का अंदाजा लगाया जा सके तो फिर एतबार किया जाएगा, लेकिन अगर महरे मिसल का अंदाजा लगाने की कोई सूरत नहीं तो फिर इस सूरत के अंदर बीवी के वारिसों को कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। वली अबी हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम साहब की दलील यह है कि अन्ना मौतहुमा यदुल्लु अलन किराजी अकरानिहिमा, कि इन दोनों की मौत दलालत करती है अलन किराजी, इन किराज भाई काफ है दो नुकतों वाला और ज़ाद, इन किराज कहते हैं गुजर जाना खत्म हो जाना, और अकरान कहते हैं हम उमर भाई। कहते हैं इमाम साहब फरमाते हैं अन्ना मौत हुमा, के इन दोनों की मौत जो है यदुल्लु अलन किराजी अकरानी हिमा, ये इस बात पर दलालत कर रही है कि इन दोनों के हम उम्र खत्म हो चुके हैं, वो सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, वो खत्म हो गए हैं। फबी महरी मैं युकद्दिरुल काजी महर अल मिसली, तो किसके महर के जरिए काजी महरे मिसल का अंदाजा लगाएगा? ये सवाल पूछ रहे हैं, यानी अब महरे मिसल का अंदाजा लगाने की कोई सूरत नहीं है। तो कहते हैं कि इन दोनों की मौत जो है इन के हम उम्रों के खत्म हो जाने पर दलालत कर रही है। फबी महरी मैं युकद्दिरुल काजी महर अल मिसली, तो किसके महर के साथ काजी महरे मिसल का अंदाजा लगाएगा? हम उम्र तो सारे खत्म हो चुके हैं, तो महरे मिसल का अंदाजा लगाने की कोई सूरत नहीं, इसलिए दोनों की मौत के बाद महरे मिसल का कोई एतबार नहीं। आगे देखिए, व मंबासा इलम रती ही शई अन फकालत हुआ हदीयत उन वकाल जौज हुआ मिनल महरी फल कौल कौल हु। याद रखो भाई, खावंद बीवी को महर की अदायगी करता है और कोई चीज वगैरह उसको महर की नीयत से देता है तो खावंद के लिए बतलाना जरूरी नहीं, खावंद के लिए बीवी को बतलाना जरूरी नहीं है, वैसे भी महर की अदायगी कर सकता है। तो लिहाजा आप सूरत ये, एक शख्स ने बीवी को कोई तोहफा वगैरह भिजवाया और बाद में खावंद कहता है ये तो मैंने तुम्हें महर में से दिया था, और बीवी कहती है नहीं ये तुमने मुझे वैसे तोहफे के तौर पर दिया था, तो इस सूरत में खावंद का कौल मोतबर है, क्योंकि खावंद चीज देने वाला है, उसको ज्यादा इलम है कि उसने किस नीयत से यह चीज दी थी भाई। तो कहते हैं वमंबासा इलम रती ही शई आ, और जिसने अपनी बीवी की तरफ कोई चीज भेजी, वकालत हुआ हदीयतुन, तो वो औरत कहती है कि ये हदीया है तोहफा है, वकालत जौज हुआ मिनल महरी, और खावंद कहता है कि ये महर में से है, यानी ये महर में से था, फल कौल कौलुहू, तो कौल जो है खावंद का मोतबर है यानी कसम के साथ, लिअन्नहू हुवल मुमल्लिकु, इसलिए क्योंकि खावंद उसको मालिक बनाने वाला है, फकाना आरफा बिजिहति तमलीकी, तो वो ज्यादा जानने वाला है मालिक बनाने की जिहत को कि उसने किस एतबार से मालिक बनाया है, तोहफे के तौर पर मालिक बनाया है या महर के तौर पर मालिक बनाया है, वो ज्यादा जानता है। कैफा, और कैसे यानी खावंद का कौल मोतबर नहीं होगा, वह अन्न जाहिरा अन्नहु या साफी इस कातिल वाजिबी, जाहिर यह है कि वो अपने से वाजिब के साकित करने में कोशिश करेगा। भाई देखिए, एक शख्स के जिम्मे एक वाजिब हो तो उसकी अव्वलीन कोशिश यह होती है कि मेरे जिम्मे से वाजिब साकित हो जाए। तो अब खावन बीवी को एक चीज दे रहा है, इसमें दो जिहतें हो सकती हैं। हो सकता है यह वैसे ही तोहफे के तौर पर दे रहा हो, यानी तबर्रुअन हो। मैंने बताया था तबर्रुअ इसे कहते हैं कि अपनी तरफ से किसी को कोई चीज देना, यानी जो उस पर लाजिम ना हो गई। तो लिहाजा खावन बीवी को कोई चीज देता है तो इसमें तबर्रुअ का भी एहतमाल है और इसके अंदर वाजिब की अदायगी का भी एहतमाल है कि हो सकता है खावन के जिम्मे जो महर वाजिब है वो उसकी अदायगी कर रहा हो। और मुझे बताइए, एक शख्स जिसके जिम्मे कोई चीज वाजिब हो, उसकी अव्वलीन कोशिश क्या होगी कि वो वाजिब को अदा करे या तबर्रुअन एक चीज दूसरे को दे? वाजिब की वो कोशिश करेगा कि मेरे जिम्मे से वाजिब साकित हो जाए। भाई तो कहते हैं, फिर देखिए, कहते हैं फल कौलू कौलू, खावन का कौल मोतबर है, यानी कसम के साथ ली, अन्नहू हुवल मुमल्लिकु, क्योंकि खावन जो है वो इस औरत को मालिक बना रहा है। फकान आरफ बि जिहति तमलीकी, तो वो ज्यादा जानने वाला है मालिक बनाने की जिहत को कि वो किस एतबार से मालिक बना रहा है। कैफा, और कैसे खावन के कौल का एतबार नहीं किया जाएगा। वह अन्न जाहिरा, और जाहिर यही है कि अन्नहू यसाफी इस कातिल वाजिबी, कि वो वाजिब को अपने से साकित करने में कोशिश करेगा। भाई जाहिर यही है कि जब उसके जिम्मे एक वाजिब है तो वो वाजिब को अपने से साकित करने की कोशिश करेगा। काला, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह जामे सगीर में फरमाते हैं, इल्ला फी ताआमिल लदी यूकलू, मगर उस ताम के अंदर जिसको खाया जाता है। फइन्नल कौल कौलुहा, इसके अंदर औरत का कौल मोतबर है। भाई इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अगर खावन ने बीवी को ऐसी चीज तोहफे में दी है जिसको खाया जाता है, यानी वो ज्यादा देर रहती नहीं, मसलन उम्दा किस्म का खावन ने खाना तैयार करके बीवी को भिजवाया है, तो फिर इस सूरत में इसको महर में शुमार नहीं किया जाएगा। क्योंकि महर तो ऐसा हो जिसमें कुछ तो बका हो, कुछ देर तो वो रह सके, और यह खाना तो चंद घंटों के अंदर ही खराब हो जाएगा अगर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की चीज जो फौरी खराब होने वाली है, मसलन खाना वगैरह है, अगर ये खावंद ने बीवी को भिजवाया है और बाद में कहता है ये तो मैंने महर की अदायगी के तौर पर ये आला किस्म का खाना भिजवाया था, तो नहीं, अब खावंद के यहां कौल का एतबार नहीं किया जाएगा बल्कि औरत का कौल मोतबर होगा। भाई तो कहते हैं इल्ला फी ताआमिल लदी युकलु, मगर उस खाने के अंदर जिसको खाया जाता है। फइन्नल कौल कौलुहा, इसके अंदर औरत का कौल मोतबर है। वल मुराद मिनहु, और ये जो ताम पीछे जिक्र, भाई याद रखो ताम अरबी जुबान में गंदुम को भी कहते हैं, ये जो गल्ला है गंदुम इसको भी क्या कहते हैं, ताम कहते हैं। तो आगे साहिब हिदाया माना बयान कर रहे हैं कि जो पीछे ताम जिक्र हुआ, इल्ला फि ताआमिल लदी युकलु, इससे गंदुम वगैरह मुराद नहीं है। गंदुम को तो बड़े अरसे तक महफूज रखा जा सकता है भाई, तो इससे मुराद वो खाना है जिसको खाने के लिए तैयार किया गया है भाई, जो चंद घंटों में ही खराब हो जाएगा अगर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। भाई तो कहते हैं वल मुरादु मिनहु, और इस ताम से मुराद जो है, मा यकूनु मुहय्यउन लिल अकली, वो है जिसको तैयार किया गया हो खाने के लिए। लिअन्नहु युतआरफु हदीयतन, इसलिए क्योंकि इस किस्म का खाना वो मुतआरफ है बतौर हदीये के, इस तरह का खाना तोहफे के तौर पर दिया जाता है, महर के तौर पर नहीं दिया जाता। फअम्मा फिल हिंतति व शईर फल कौल कौलुहु लिमा बैन्ना, हां अगर गंदुम या जौ वगैरह खावंद ने भिजवाई है, अब गंदुम और जौ ये तो बड़े अरसे तक महफूज रह सकती है, तो इसके अंदर फिर खावंद का कौल मोतबर है, और अगर वो कहता है ये मैंने बतौर महर के दिए थे तो इनको महर ही में से शुमार किया जाएगा। तो कहते हैं फअम्मा फिल हिंतति व शईरी, बाकी गंदुम और जौ के अंदर, फल कौलु कौलुहु, तो खावन का कौल मोतबर है। लिमा बैन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि खावन के जिम्मे एक वाजिब मौजूद है, वो कोशिश करेगा कि मेरे जिम्मे से ये वाजिब साकित हो जाए। भाई वकीला, और कहा गया है, मा यजिबु अलैहि मिनल खिमारी वद्दिरई वगैरिही लैसा लहू अन यहतसिबहु मिनल महरी। फुकहा फरमाते हैं कि वो चीजें जो खावन पर वाजिब हैं, मसलन खावंद पर बीवी का खर्चा भी वाजिब है, खाने पीने का उसका इंतजाम खावंद करेगा। नीज बीवी के कपड़े वगैरह का इंतजाम भी खावंद के जिम्मे है। अब अगर खावंद बीवी को कपड़े वगैरह देता है और फिर कहता है ये मैंने महर में से दिए थे, तो अगर ये उसी तरह के कपड़े आम कपड़े हैं जो खावंद के जिम्मे बनते हैं तो फिर इसको महर में से शुमार नहीं करेंगे। ये तो वैसे भी खावंद के जिम्मे थे भाई, कि बीवी के कपड़ों का इंतजाम भी किसके जिम्मे है, खावंद के जिम्मे है, लिहाजा इनको महर में से शुमार नहीं करेंगे। हां अगर खावंद ने कोई बहुत आला लिबास इसको दे दिया कि आम तौर पर इस तरह का लिबास खावंद के जिम्मे नहीं वाजिब होता, तो इसको खावंद अगर महर में से शुमार करना चाहे तो शुमार कर सकता है। भाई बात समझ में आ गई। मालूम हुआ आजकल बीवी को कोई कीमती मोबाइल वगैरह लेकर देते हैं तो वो तो खावन के जिम्मे वाजिब नहीं है, खावन उसको महर में से शुमार कर सकता है। बात समझ में आ गई। वकील और कहा गया है मा यजिबू अलैही कि वो चीज जो खावन पर वाजिब है मीनल खिमारी व दिरई यानी के दुपट्टा व दिरई, दिरउन लंबी कमीज को कहते हैं जैसे अरब औरतें पहनती हैं भाई, तो कहते हैं मा यजिबु अलैही वो चीज जो खावंद पर वाजिब है मीनल खिमारी व दिरई वगैरही जैसे दुपट्टा है और लंबी कमीज वगैरह है, लैस लहू अन यहतसिबहु मीनल महरी, तो खावंद के लिए जायज नहीं है कि वो इसको महर में से शुमार करे, लिअन जाहिर युकद्दिबुहु इसलिए क्योंकि जाहिर हाल खावंद को झुटला रहा है, क्योंकि ये चीजें तो उस पर खावंद पर वैसे ही वाजिब थी भाई कि बीवी के लिए कपड़ों का इंतजाम करे, लिहाजा इसको महर में शुमार करना उसके लिए जायज नहीं, यह माना है। तो कहते हैं लैस लहू अन यहतसिबहु मिनल महरी, खावन के लिए जायज नहीं है कि वो इनाम कपड़ों को महर में से शुमार करे, लिअन्न ज़ाहिर युकद्दिबुहु इसलिए क्योंकि जाहिर हाल खावन को झुटला रहा है, वल्लाहु आलम और अल्लाह खूब जानने वाले हैं। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।